नमस्कार, हमारी वेबसाइट की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीसीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा की कुर्सी खतरे में, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला के बारे में। हमारे पैनल में आज चार लोग मौजूद हैं जो इस खबर के सिर्फ मेन पॉइंट्स और सबसे जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं।
अगला मेन पॉइंट है, एक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीसीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के 12 साल के कार्यकाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उल्लेख किया गया है कि मनन कुमार मिश्रा वर्ष 2012 से बीसीसीआई के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं। वर्ष 2014 में कुछ महीनों के संक्षिप्त अंतराल को छोड़कर वह लगातार इस पद पर निर्वाचित होते रहे हैं। अगला मेन पॉइंट है, लगातार सातवें कार्यकाल की वैधता पर सवाल। मार्च 2025 में मनन कुमार मिश्रा को एक बार फिर निर्विरोध चेयरमैन चुना गया, जो उनका लगातार सातवां कार्यकाल माना जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था में इतने लंबे समय तक पद का एक ही व्यक्ति के पास रहना लोकतांत्रिक संतुलन के विपरीत है। मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगी, इस अपडेट का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, इसलिए ये मेन पॉइंट बहुत जरूरी है।
अगला मेन पॉइंट है, दो, क्या है बीसीसीआई का नियम 12-2 और क्यों सवालों के घेरे में है अप्रैल 2025 की गजट अधिसूचना। याचिका का मुख्य आधार बीसीसीआई नियमों का 12-2 है, जो स्पष्ट करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा। यह अवधि सदस्यता समाप्त होने या 2 साल पूरे होने जो भी पहले हो तक ही प्रभावी रहती है। अगला मेन पॉइंट है, प्रशासनिक अधिसूचना बनाम वैधानिक नियम। याचिका में 21 अप्रैल 2025 को जारी उस गजट अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके जरिए कथित रूप से मिश्रा का कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर जारी कोई भी आदेश मूल वैधानिक नियमों का स्थान नहीं ले सकता।
बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इस खबर के अगले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं। अगला मेन पॉइंट है, 3, मनन मिश्रा को पद से हटाने और तय समय सीमा में नए चुनाव कराने की मांग। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मनन कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से चेयरमैन पद से हटाया जाए। इसके साथ ही बार काउंसिल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। अगला मेन पॉइंट है, स्वतंत्र निगरानी में चुनाव की आवश्यकता। याचिका में इस बात पर बल दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। इसके लिए अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की देखरेख में मतदान कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि सभी राज्य बार काउंसिलों को समान अवसर मिल सके।
बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इस खबर के अगले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं। अगला मेन पॉइंट है, 4, कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने और राज्यों के रोटेशन फॉर्मूले का प्रस्ताव। याचिका में बार काउंसिल के ढांचे में दीर्घकालिक सुधारों की वकालत की गई है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कार्यकाल की एक अधिकतम सीमा टर्म लिमिट तय की जानी चाहिए, ताकि एकाधिकार की स्थिति न बने। अगला मेन पॉइंट है, रोटेशन प्रणाली और कूलिंग ऑफ पीरियड। याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और राज्यों को नेतृत्व का उचित अवसर देने के लिए एक पारदर्शी रोटेशन प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है।
वाह, ये तो सच में कमाल की जानकारी है। हमारे दर्शकों को ये पॉइंट जरूर ध्यान से सुनना चाहिए।
अगला मेन पॉइंट है, 5, पर्लफर्स ट्रस्ट और आईप फंड्स की जांच कैग ऑडिट कराने की गुहार। याचिका में केवल चुनावी और कार्यकाल से जुड़े मुद्दे ही नहीं, बल्कि बीसीसीआई से जुड़े वित्तीय मामलों और फंड प्रबंधन पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से इंडिया बार एग्जामिनेशन आईप से होने वाले वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की मांग की गई है। अगला मेन पॉइंट है, वित्तीय लेनदेन और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीसीआई ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट और संस्थागत प्राप्तियों के प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता की कमी रही है। अदालत से आग्रह किया गया है कि कैग कैग द्वारा नामित स्वतंत्र ऑडिटर से निम्नलिखित पहलुओं का विशेष कराया जाए।
बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इस खबर के अगले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये थे इस खबर के सभी मेन पॉइंट्स। हमारी चार लोगों की टीम को उम्मीद है कि आपको ये छोटी और काम की चर्चा पसंद आई होगी। हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।